अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी और साथ ही इन अष्टलक्ष्मी राज्यों की सुंदरता और गीत संगीत को भी हम शब्दों के माध्यम से महसूस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आधे घंटे के इस सफर पर चलते हैं, ये देखने कि पूर्वोत्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक विरासत के साथ जीवन शैली में कितना सहज है, प्रकृति से कितना निकट है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर।
पूर्वोत्तर डायरी।
आज हम सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र के महापर्व के संबंध में, जब लोगों के वोटों की गिनती की जाएगी। सिक्किम में लोकसभा की एक सीट और 32 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए मतदान के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन सिक्किम विधानसभा सीटों की मतगणना आज की जा रही है। लोकसभा चुनावों के लिए डाले गए वोटों की गिनती देश के सभी अन्य राज्यों के साथ ही 4 जून को होगी। मतगणना की तैयारी के संबंध में राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पेमा लादेन लामा से हमारी संवाददाता उषा शर्मा ने बातचीत की है, आइए सुनते हैं।
हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
नमस्कार।
सबसे पहले सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के लिए मतगणना क्यों 2 जून में हो रहा है, इस बारे में अवगत कराएं।
जैसे कि सब देशों के अन्य भाग में जो हो रहा है कि 4 तारीख को ही काउंटिंग हो रहा है, तो सिक्किम के लिए भी वही था। देन हमारे डिपार्टमेंट ने वी इन्फॉर्म्ड द ईसीआई कि 2 तारीख को तो हमारा जो असेंबली है उसका टर्म एक्सपायर हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच हमको उसी दिन ही हमारा काउंटिंग करना होगा, सो दैट शाम तक हमारा ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन का नोटिफिकेशन निकल जाए। इसीलिए 2 तारीख को करना एकदम इम्पोर्टेंट हो गया
और लोकसभा के लिए तो 4 जून को ही। और वोटिंग प्रतिशत, मतगणना की प्रतिशत कितनी थी सिक्किम में 19 अप्रैल को जिस दिन मतदान हुआ था, और अभी तक ईवीएम से और पोस्टल बैलेट से जोड़ के कितना प्रतिशत मतदान हुआ है?
टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए हर एक पोलिंग स्टेशन, मतलब पूरे पोलिंग स्टेशन में सिक्किम में, वो है 79.88% है। और ये जो परसेंट है ये एक्सक्लूडिंग पोस्टल बैलेट है, जो हमारा टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो निकलेगा आपके काउंटिंग के बाद, लेकिन अभी जो ईवीएम का वोटिंग है उसका परसेंटेज आपका 79.88% है।
इसका मतलब पहली जून तक ये पोस्टल बैलेट हम लोग को मिलता रहेगा?
जी जी, जितना पोस्टल बैलेट मिले, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि काउंटिंग के सुबह तक
जी
जो जो पोस्टल बैलेट आए वो सब काउंटिंग में जाएगा।
अब कृपया मतगणना की तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिले स्तर में, जिला स्तर में किस प्रकार से मतगणना किया जाएगा इस बारे में?
सो हम लोगों ने हर एक जिले में जो जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईसीआई वो सब फॉलो किया हुआ है, वेदर इट इज सिक्योरिटी भी किया हुआ है, विद रिगार्ड टू मैन पावर आरओ एआरओ एडिशनल एआरओ वो सब किया हुआ है, वीवीपैट स्लिप काउंटिंग का जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है उसका कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें मेश वॉल्स होना है वो सब किया हुआ है, बैरिगेडिंग वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन जो जो है हमने सब किया हुआ है, सिक्योरिटी, मैन पावर, एनी अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट सब कुछ हमारे स्टेट में अप टू डेट हो गया है।
अब काउंटिंग हॉल में आपने प्रिपरेशन के बारे में तो बताया, और मतगणना का परिणाम का घोषणा किस प्रकार से की जाएगी?
एक तो पीए सिस्टम है हमारा
जी,
जो काउंटिंग हर एक काउंटिंग वेन्यू में होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का मीडिया एंड कम्युनिकेशन रूम भी है
जी,
हर एक काउंटिंग हॉल काउंटिंग सेंटर में हम लोगों का एक एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ मीडिया रहेंगे और जिनको हम लोग हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।
तैयारी
है
जी। हाँ, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी आपने हमारे स्टूडियो में आकर मतगणना की तैयारी के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दिया, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ।
थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे सिक्किम राज्य में मतगणना की तैयारी के संबंध में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पेमा लादेन लामा से ली गई ये भेंटवार्ता। बातचीत कर रही थी हमारी संवाददाता उषा शर्मा। पूर्वोत्तर डायरी में अब हम बात करते हैं बीते सप्ताह चक्रवात रेमल की। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पूर्वोत्तर के कई इलाके इससे प्रभावित हुए। मिजोरम में, असम में और मेघालय में जान का नुकसान भी हुआ। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कई जगहों पर जमीन धंसने और भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित रही। मिजोरम की राजधानी आइजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान ढहने के साथ लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 23 तक जा पहुंची। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उधर असम में 3 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। मेघालय में पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में एक दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में भूस्खलन हुआ और 4 लोग इसमें घायल हो गए। मणिपुर में बाढ़ का कहर इस सप्ताह देखने को मिला। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव और राहत कार्यों में लगाया गया और लगभग 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर भी खोले गए। राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी सरकारी कार्यालयों में सामान्य अवकाश की घोषणा भी की। राज्य उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी सरकारी सहायता प्राप्त निजी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को 1 जून तक बंद रखा। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए 2400 घंटे नियंत्रण कक्ष बनाए गए। और अब हम बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड 17 प्रमुख जनजातियों का घर है। ये जनजातियाँ हैं अंगामी, एओ, चाखेसांग, चांग, खियामनी, युंगन, कुकी, कोन्या, कचारी, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सुमी, संगतम, टिकिर, यिमखियुंग और जेलियांग। प्रत्येक जनजाति अपने रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक के मामले में एक दूसरे से अलग होती है। इस पहाड़ी राज्य में रहने वाली 17 जनजातियों और उप जनजातियों में हर एक को उनके द्वारा सजाए गए रंगीन और विभिन्न प्रकार के डिजाइन वाले परिधानों, आभूषणों और वस्त्रों से आसानी से पहचाना जा सकता है। जी बिल्कुल सच बात है, आप पहचान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम नागालैंड की आंगामी नागा जाति के बारे में बात करेंगे। आंगामी नागा जनजाति नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है और इसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। राज्य की राजधानी और राज्य का दूसरे सबसे बड़ा जिला कोहिमा आंगामी लोगों का घर कहा जाता है।
The Angami tribes are mainly indigenous inhabitants of Kohima district, which is divided into four regions. In north, Angamis are located in the north of Kohima, in the south at the foothills of Mount Jaffu. Western Angamis are in the west of Kohima, and Chakro, mostly settled in and around Dimapur and Tumikidima district. Agriculture is the main occupation, and the Angamis cultivate rice and grains on the hilly terrain.
Angami Janajatiya Vartaman mein Kohima Zile mein basi hui hain, jo char kshetron mein विभाजित किए जा सकते हैं। अंगामी कोहिमा के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में माउंट जाफू की तलहटी में, पश्चिम अंगामी कोहिमा के पश्चिम में, और चाखरू अंगामी ज्यादातर दीमापुर और चुमकेदिमा जिलों के आसपास बसे हैं। खेती करना इनका मुख्य व्यवसाय है। पहाड़ी इलाकों में चावल और अनाज की खेती की जाती है, और अंगामी समाज पितृसत्तात्मक है। अंगामी लोगों के बीच मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार है सिक्रेनी। ये त्योहार फरवरी के महीने में आता है, और इसे चंद्र वर्ष की शुरुआत का इसे प्रतीक कहा जाता है। 10 दिन का ये उत्सव होता है, जो वास्तव में शुद्धिकरण का प्रतीक बताया जाता है। अंगामी सार्वजनिक संगठन के अध्यक्ष श्री राजू वोटुओ चाचू ने अंगामी जनजाति के बारे में इस तरह बताया।
अंगामी ट्राइब इज अ मेजर ट्राइब इन नागालैंड, प्रीडोमिनेंटली सेटल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहिमा, चुमकेदिमा एंड दीमापुर। देयर आर ओवर 100 अंगामी नागा विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस फोर रेंजेस, नेमली नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, चकमा। एज अ ट्राइब द अंगामी फॉल्स अंडर तेनी family. Tengi De is a mother tongue of the Angamis. The Angami are one of the first tribes in Nagaland who embrace Christianity.
अंगामी पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों का डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग होता है। पुरुष सफेद और काले रंग के शॉल पहनते हैं, और महिलाएं मेचला पहनती हैं, जो अद्वितीय डिजाइन और एक अलग ही तरह के पैटर्न की स्कर्ट कही जा सकती है, और इसके ऊपर शॉल। स्त्री और पुरुष दोनों ही बेहद सुंदर आभूषण पहनने के बड़े शौकीन होते हैं। मोती, मुखौटा, पेंडेंट, चूड़ियां और कंगन इन सभी में काफी आम है। अंगामी लोग अपनी काष्ठ कला और कलाकृतियों के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं। नृत्य, संगीत, गीत अंगामी नागा जनजातियों का जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा कहा जा सकता है। हर एक धार्मिक और सामाजिक अवसर पर सभी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, नाश्ते करते हैं और आनंद करते हैं।
Both men and women enjoy wearing beautiful ornaments. Beads, miniature marks, pendants, bangles and bracelets are most common among them all. Angamis are also quite popular for their woodcrafts and artwork. Dances and songs are an essential part of the Angami Naga tribes. On every religion and social occasion, the villagers gather together to sing and dance. Asunyo from Akashwani News, Kohima.
बात मेघालय की। मेघालय सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं और नशीले पदार्थ के खतरे को खत्म करने के लिए ग्राम रक्षा दलों VDP को मजबूत करने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगडू ने बीते मंगलवार को ड्रग रिडक्शन एलिमिनेशन एंड एक्शन मिशन ड्रीम इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में गृह, पुलिस विभाग, समाज कल्याण और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में शामिल विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया। मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए अल्पकालिक उपायों पर श्री लिंगडू ने कहा कि इस चर्चा में इस क्षेत्र में पुनरुद्धार और पुनर्गठन केंद्रित है, और विशेष रूप से शिलांग शहर सहित चिन्हित हॉटस्पॉट में ग्राम रक्षा दलों के आयोजनों की संभावना पर भी गौर किया गया। उन्होंने बताया कि हमारे लिए चिंता का प्रमुख क्षेत्र कार्यक्रम को अधिक समुदाय उन्मुख बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ड्रीम केवल एक सरकारी पहल के रूप में नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने और इसे समाप्त करने के लिए नागरिक समाज की भागीदारी को व्यापक बनाना बेहद महत्वपूर्ण है।
And also the election activities that are taking place. For instance, the latest example I can cite is Mumbai, where the committee came over to accommodate these users. But all the facilities, including food, the state, and the counseling that happened, was done entirely with funding of the government, the social welfare department. Well, one of the gaps was, for instance, the fact that the various shrines felt that they are not adequately empowered, and for some of them to even identify and be involved in the process of taking a person, an accused, and registering cases against them in the police station becomes a very cumbersome task. So that was one area. And we thought that better policing would happen if we are able to involve the communities through the PDPs.
उन्होंने कहा कि मेघालय राज्य भर में ग्राम रक्षा दलों की उपस्थिति को वे मजबूत करना चाहते हैं और उन संभावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि उदाहरण के तौर पर एक कमी ये है कि आरोपी को पकड़ने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार दिया जाए। पुलिस स्टेशनों पर भी बहुत बोझिल काम बन जाता है और इस कार्यक्रम में विचार विमर्श से बेहतर पुलिस सिंह की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी ताकि वे वीडीपी के माध्यम से समुदायों को शामिल करने में सक्षम हो सकें और ये एक बहुत बड़ी पहल है और वे पूरे वीडीपी की उपस्थिति में सुधार और संशोधन भी करना चाहते हैं।
प्रोग्राम मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड वुड नॉट लाइक टू सी ड्रीम एज जस्ट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव बट बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एंड इरेडिकेट the menace of drugs and narcotics, we need to broaden the involvement of civil society.
वीडीपी के कर्तव्यों और कार्यों में जरूरत पड़ने पर कानून और व्यवस्था शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए गश्त करना भी शामिल है। सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और अपराधों को रोकने जैसी गतिविधियों की बेहद जरूरत है, इसलिए नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए।
स्टेट गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड वेरियस इंटरवेंशंस टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स मैटर्स इन द स्टेट। This move of the government to engage the village defense parties is a step forward to address the gaps in dealing with this issue. This is Lamphang Nuspung from AIR New Shillong.
और आइए अब सुनते हैं नए आपराधिक कानून विषय पर सीआईडी असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता से बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा।
हम लोग आज टीवी न्यूज वॉक के बारे में सबसे बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि ये तीनों में जो एक्ट है जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सत्ता में है, एक होगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षर अधिनियम, ये तीनों नए कानून के प्रावधान में क्या क्या है और तीन कानून लाने की जरूरत क्या आप हुई?
जैसे कि हम सब जानते हैं जो हमारी पुराने आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस थे ये बहुत पुराने हो गए थे और ये ब्रिटिश जमाने के कानून थे। कॉलोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये कानून तब लागू किए गए थे। अब जो ये तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आएंगे। ये कानून जो विक्टिम सेंट्रिक है, ये न्याय व्यवस्था न्याय सेंट्रिक है, ये लोगों को न्याय मिले और जो अपराध के विक्टिम है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों कानून को लाया जा रहा है। और इससे जो हमारे डिजिटल एज है, हम डिजिटल एज में आ चुके हैं, उन समस्याओं को भी जो डिजिटल क्राइम है, डिजिटल एविडेंस है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तीनों कानून लाया गया है। जी, हम लोग सब जानते हैं कि ये कुछ दिनों के बाद अर्थात 1 जुलाई से तीनों कानून
पूरा देश भर में लागू होगा और असम अभी भी लागू होने वाले हैं। तो असम पुलिस तीनों कानून के लिए सही से तरीके से लागू करने के लिए किस तरह से तैयार है और इस कानून को सही से लागू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है उसके लिए हम लोग कितने प्रस्तुत हैं।
जैसे कि हम सब जानते हैं ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और इसके लिए हमें पर्याप्त समय मिला। ये कानून पार्लियामेंट में 2023 में पास हो गया था और हमें पर्याप्त समय दिया गया, राज्यों को समय दिया गया ताकि वो अपना तैयारी कर सके और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जितने जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स है और अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनका ट्रेनिंग तेजी से चल रही है और ट्रेनिंग हम सबका करवा लेंगे और उसके साथ साथ जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उस पर भी असम में हमने सरकार ने 5 रीजनल लेबोरेटरीज भी बनवाए हैं, वो उनका काम शुरू हो गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से हमने अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है, उनकी एक कैंपस गुवाहाटी से अभी काम करना शुरू कर दिया है। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए
और क्योंकि ये लोगों के लिए है, लोगों के भलाई के लिए है, वो बिल्कुल सेंसिटिव है। तो जाहिर सी बात यह है कि सर इसमें हम लोगों की करनिया क्या होगा और हम लोग की जिम्मेदारी क्या क्या है इसमें। जैसे कि अब लोगों को काफी सुविधा होगी, इन तीनों कानून में EFIR की प्रावधान है, तो अगर किसी वजह से जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस स्टेशन पे नहीं जा पाए तो वो इलेक्ट्रॉनिकली FIR लॉन्च कर सकते हैं। 0 FIR की भी प्रावधान है कि पहले जैसे कई बार पुलिस स्टेशन मना कर देती थी FIR दर्ज करने से, क्योंकि ये कहते थे कि हमारे जुरिस्डिक्शन में घटना नहीं हुई, आप इस तरीके से लोगों को असुविधा होती थी, पर इसको अब दुरुपयोग कर दिया गया है। अब हर किसी भी पुलिस स्टेशन को केस रजिस्टर करेगी और जुरिस्डिक्शन के नाम पे मना नहीं कर सकते। महिला और बच्चों के ऊपर जो अपराध होता है उस पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। मैं यही कहूंगा कि जब कभी भी कोई अपराध हुआ है तो वो जल्दी से जल्दी आके पुलिस स्टेशन में अपना कंप्लेन लिखवाए, इलेक्ट्रॉनिकली लिखवाए और इस पे ताकि पुलिस इस पे अपराध को छानबीन करके जो भी इस पे अपराधी है उन पे कार्रवाई कर सके। इस तीनों कानून में से एक बहुत बड़ा प्रावधान रखा है कि साइबर सिक्योरिटी, या क्योंकि आज की तारीख में जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल फुटप्रिंट पे हम लोग अवेलेबल है, तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम लोग की जो साइबर सेफ्टी है उस पर हम लोग को लोगों को जानकारी मिलना जरूरी है और इसमें सतर्क हो ये बहुत जरूरी है। असम में अभी हाल क्या है सर, लोगों में जानकारी किस तरफ से है साइबर सिक्योरिटी के लेकर और आप CID के प्रमुख के नाते इस दिशा में कैसे कदम उठा रहे हैं?
देखिए, साइबर क्राइम आज के दिन का एक बड़ा समस्या है और इसके लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है और कई स्तर पर जागरूकता के लिए काम किया जा रहा है, तो लोग सजग रहे, लोग साइबर क्रिमिनल के जाल में नहीं आए, इस पे ध्यान रखे, लोग सजग रहे। और अभी सरकार ने 1930 एक हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये 1930 जब कभी भी कोई साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जल्द से जल्द इस पे आप रिपोर्ट करें। उसमें व्यवस्था है कि अगर बैंकिंग सिस्टम से जो पैसा है वो अगर बाहर नहीं गया है तो उसको रुकवाया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि लोग सजग रहें, साइबर क्रिमिनल के जो उनके मोडस ऑपरेंडी है उससे बच के रहें और अगर अपराध होता है कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उसको जल्द से जल्द 1930 में दर्ज करवाए।
अब पहले हम लोग देखते थे कि कुछ खास मौके पर या कुछ जैसे केस की गहराई को देखते हुए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट की प्रावधान हुआ करता था, अभी भी है, इस नए कानून में से क्या प्रावधान है?
नए कानून में बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं जिससे न्याय प्रणाली जो है वो न्याय का जो सिस्टम है वो इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो दोनों ही फास्ट होंगे और जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके इसकी खास व्यवस्था की गई है। ये जो इनिशिएशन भी टाइम बाउंड मैनर में हो, ट्रायल टाइम बाउंड मैनर में हो, इसकी व्यवस्था की गई है।
और आखिर में ये सीआईडी के प्रमुख के नाते और असम के लोगों से आप क्या अपील करेंगे इस नए कानून को लेकर?
नए कानून जो आए हैं ये लोगों के हित को ध्यान में रखने में लाया गया है। जो विक्टिम है उनको न्याय मिल सके, उनके हितों को नजर में रख के ये कानून लाए गए हैं, तो ये सबके भलाई के लिए है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब कभी भी अपराध हो तो उसकी सूचना तो मेरे पुलिस स्टेशन में, उसको जल्द से जल्द आप सूचना दें और आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप दे सकते हैं।
तो सर आपका आपने फिर से हमें समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानून विषय पर सीआईडी असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मुन्ना प्रसाद गुप्ता से बातचीत। बातचीत कर रहे थे हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। और अब पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। हमें अवश्य ही अपने सुझाव लिख भेजें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। नंबर नोट कीजिए 9289094044। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। और अब अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी इस वादे के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।